सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिर्णये जिणेणमिमुम् वेयणमहाहियारम् विविहियारम् परूवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित देवला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। ये दसवीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना अनुयोग द्वार की अपनी बात चल रही है। इसमें हम पृष्ठ संख्या 114 पर आ गए। देखो यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि समय प्रबद्ध की निषेक रचना की बात अभी बता रहे हैं। समय प्रबद्ध का अर्थ मालूम, एक समय में जितने कर्म परमाणु ग्रहण किए जाते हैं उस संख्या को कहते हैं समय प्रबद्ध, एक समय में बंधे हुए। तो उसके लिए छह अनुयोग द्वार से एक चर्चा चलेगी। एक तो है प्ररूपणा, दूसरा प्रमाण, तीसरी श्रेणी, चौथा अवहार भागा भाग, और छठा अल्पभूतव। अब उसमें हरेक निषेक में प्रदेशाग्रह है ऐसा कहेंगे तो प्ररूपणा हो गई। अब उसका प्रमाण जो है, तो प्रथम स्थिति में जो पहले निषेक में जो है वो अनंत है, और इसी तरह से उत्कृष्ट तक ले जाना चाहिए ऐसा कहा था, ये हुआ प्रमाण। अब श्रेणी की प्ररूपणा का अर्थ होता है ये जो निषेक रचना हुई है, तो पहले निषेक से दूसरे निषेक में कितने परमाणु है, ज्यादा है कम है, कैसे किस प्रपोर्शन में है, उसकी जो संख्या बताएंगे उसको कहते हैं श्रेणी। तो देखो हमने अभी अभी दो लाइन पढ़ी ना, 114 के नीचे के दो लाइन। प्रथम स्थिति में जो परमाणु निषिक्त होते हैं वे अनंत है, इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक इन्हें निषेक तक ले जाना चाहिए। प्रमाण की प्ररूपणा यहाँ समाप्त होती है। अब श्रेणी दो प्रकार से बताएंगे। तो कहते अनंत रूप निधा और परम्परोप निधा। अनंत रूप निधा की अपेक्षा यानी एक एक निषेक के प्रति कितने कितना द्रव्य है उसको कहते हैं अनंतर उपनिधा। उसकी अपेक्षा 7000 वर्ष आबाधा को छोड़कर जो प्रदेशाग्र, प्रदेशाग्र ने परमाणुओं की संख्या जो प्रथम समय में निषिक्त होता है वह बहुत है। हमने देखा है किसी भी समय में कर्म बनता है तो आबाधा काल में तो कुछ निषेक की रचना नहीं है, उसके बाद पहला दूसरा तीसरा चौथा इससे जितनी स्थिति बांधी है उसमें से आबाधा कम करो तो उर्वरित स्थिति के हर एक समय में एक एक निषेक है, और प्रत्येक में कितने परमाणु उसकी बात करेंगे अभी। तो पहले निषेक में ही अनंत परमाणु और ऊपर थोड़े कम होते चले जाएंगे। जो प्रदेशाग्र द्वितीय समय में निषिक्त होता है वह विशेष हीन है, इस प्रकार विशेष हीन के क्रम से कर्म स्थिति के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। विशेष हीन को हमने क्षय कहा था, घटते 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 ऊपर तक वो घटता चला जाएगा। अब वो कितना कितना हीन होता है वो चय का प्रमाण क्या है, तो उसका प्रमाण बताते हैं। निषेक भागहार का प्रथम निषेक में भाग देने पर जो द्रव्य प्राप्त हो उतना द्रव्य प्रत्येक निषेक के प्रति हीन होता हुआ निषेक भागहार का अर्ध भाग व्यतीत होने तक जाता है। ये निषेक भागहार याद है कुछ? मैंने पहले देखा था, गुणहानि तो मालूम है। तो देखिए, ये पहले निषेक में जितने परमाणु हैं, वो कम से थोड़े थोड़े घटते 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 किसी पॉइंट पर आधे हो जाएंगे। मान लेते यहाँ 512 है, घटते 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 256 हो जाएंगे। तो वहां तक के निषेकों की संख्या को हम कहेंगे गुणहानि। गुणहानि कहो, गुणहानि आयाम कहो, एक ही बात है। अब उससे दुगुना जो काल है, जिसको कहते हैं दो गुणहानि, उसी का नाम है निषेक भागहार। दो गुणहानि कहो, निषेक भागहार कहो, निषेक हार कहो, एक ही बात है। अब कहते ये निषेक भागहार जो है यहाँ का, यानी दो गुणहानि का जो है, मान लेते हमने 8 समय की एक गुणहानि मान ली, तो 16 समय है, 512 को 16 का भाग देंगे तो 32 आएंगे, तो वहां का क्षय 32 होगा। प्रति निषेक 32-32 घटेगे पहले गुणहानि में। इसको अभी पूरी पढ़ते तो इसका अर्थ ख्याल में आएगा। निषेक भागहार का यानी दो गुणहानि का, हम मानते कि 8 समयों की एक गुणहानि है तो दो गुणहानि होगी 16 समयों की। और प्रथम निषेक में भाग देने पर, प्रथम निषेक है 512 का, हमने मान लिया है, जो द्रव्य प्राप्त होता है उतना द्रव्य, उसको हम चय भी कहते हैं। चय कहो, विशेष कहो, प्रचय कहो, उत्तर कहो, एक ही बात है। 4 हमने शब्द उसके लिए देखे थे। तो ये चय प्रत्येक निषेक के प्रति हीन होता हुआ, अभी अपनी 512 बाय 16 यानी 32 आ जाएगी ना, निषेक भागहार का अर्ध भाग व्यतीत होने तक, इसका अर्थ अभी ख्याल में आएगा। निषेक भागहार का अर्ध भाग किसको कहेंगे? एक गुणहानि को, क्योंकि निषेक भागहार हमने दो गुणहानि को कहा है। तो ये क्रम से एक एक चय घटता हुआ एक गुणहानि तक ऐसा ही होगा, होने तक जाता है। वहां दुगुनी हानि होती है। दुगुनी हानि का अर्थ होता है आधा हिस्सा हो जाता है, 512 का 256 हो जाएगा। दुगुनी हानि यानी 256 हो जाएगा, इसीलिए उसको गुणहानि कहते हैं ना। इसी प्रकार सब गुणहानियों का कथन करना चाहिए। अब यहाँ 256 हो गए, पहला निषेक 256 का है, अब इसको भी दो निषेक यानी दो गुणहानि से भाग देना है, तो यहाँ का चय हो जाएगा 16। 256 का 16 का भाग देंगे तो 16, तो 256 में हर समय हर बार 16-16 घटते जाएंगे, तो ऐसे ही उससे भी आधा 128 होने तक ऐसा ही चलेगा। प्रति गुणहानि पहला निषेक भी आधा आधा होता है और चय भी आधा आधा होता है, और टोटल गुणहानि की जो संख्या है परमाणु की वो भी आधी आधी होती है। देखो, इसी प्रकार सब गुणहानियों का कथन करना चाहिए। विशेष इतना है कि यहाँ अवस्थित भागहार, रूपोन भागहार, रूपाधिक भागहार और छेद भागहार, इन चारों ही भागहारों को जानकर कहना चाहिए। पहले इसकी बात आई थी ना, हमने गुणहानि गुणहानि के प्रति प्रक्षेप में देखा था, चार चार मिलाओ या फिर जितना चार मिलाने के बाद 20 हुआ तो भागहार भी एक एक से बढ़ा दो, तो प्रक्षेप तो उतना ही आने वाला है। इसी तरह से यहां भी हम कह सकते हैं। इस प्रकार अनंत रोपनिधा समाप्त हुई। अब इसी का विशेषार्थ बताते हैं। 115 पृष्ठ देखो, विशेषार्थ में इसी पैराग्राफ का फिर दोबारा कथन होगा। उपनिधा का अर्थ मार्गणा है, इसलिए अनंतर उपनिधा का अर्थ हुआ अव्यवहित समीप के स्थान का विचार करना। अव्यवहित यानी जिसमें बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, गैप नहीं है, कोई विघ्न नहीं है, अव्यवहित, जिसको हम अनंतर कहते ना, अनंतर उपनिधा ही है ना इसका नाम, उसी को तो समझा रहे हैं। अव्यवहित यानी उसमें कोई ब्रेक नहीं है पीछे, तो इमीडिएट नेक्स्ट समीप के स्थान का विचार करना। पहला निषेक है तो दूसरे निषेक में कितने परमाणु हो गए, तीसरे में कितने हो गए, चौथे में, एक एक निषेक का विचार करना, उसको कहते हैं अनंत रूपनिधा। प्रत्येक गुणहानि के जितने निषेक होते हैं उनमें से प्रथम निषेक से दूसरे निषेक में और दूसरे निषेक से तीसरे निषेक में कितना कितना द्रव्य कम होता जाता है, इसका यहाँ विचार किया गया है। इसी को हमने कहा था चय। तो पहले निषेक को दो गुणहानि से भाग देते हैं जिसका नाम है निषेक भागहार, तो वो चय की संख्या आती है और वो प्रत्येक गुणहानि में आधा आधा होता चला जाता है। नियम यह है कि प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेक के द्रव्य से अगली गुणहानि के प्रथम निषेक का द्रव्य आधा रह जाता है और यह क्रम अंतिम गुणहानि तक चालू रहता है। प्रत्येक गुणहानि के पहला निषेक को अगर हम देखेंगे तो आधा 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 अंतिम गुणहानि तक आधा आधा होता है। इसलिए प्रत्येक गुणहानि में प्रथम निषेक से दूसरे निषेक में जितना द्रव्य घटता है उतना ही उत्तरोत्तर उस गुणहानि के अंतिम निषेक तक घटता जाता है। एक एक गुणहानि में चय तो फिक्स है, अंतिम निषेक तक घटेगा फिर वो चय भी आधा हो जाएगा। प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेक से दूसरे निषेक में कितना द्रव्य घटता है इसका निर्देश मूल में किया ही है, यानी अभी जो ऊपर हमने पढ़ा उसमें तो किया ही है। अब श्रेणी की प्ररूपणा दो प्रकार से हमने देखी थी, अनंतर उपनिधान है एक एक निषेक में कितना द्रव्य। अब कहेंगे परंपरा उपनिधान। परंपरोपनिधा की अपेक्षा प्रथम समय में निषिक्त प्रदेशाग्र से पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण स्थान जाकर दुगुनी हानि होती है। दुगुनी हानि का अर्थ होता है आधी होती है, या ये प्रदेशाग्र की अपेक्षा प्रमाण स्थान जाकर दुगुनी हानि ने आधा रह जाता है, आधा रहता है। हमने देखा था 512 के 256 होते हैं, ये निषेक रचना की यहाँ बात चल रही है। तो ये एक गुणहानि पल्ल के असंख्यात भाग है ये बात बताना चाहते हैं, जिसको हमने आठ मानी है, आठ समय की मानी है, उसके लिए एक्चुअल उसका प्रमाण कितना है तो पल्ल के असंख्यात भाग इतना है। इस प्रकार अंतिम दुगुणहानि तक ले जाना चाहिए। कहीं दुगुणहानि कहते कहीं गुणहानि कहते बात तो एक ही है, दो गुना हानि होती है इसलिए उसका ही नाम है दुगुण हानि या गुण हानि। विशेषार्थ 116 पृष्ठ। परंपरोपनिधा में एक गुणहानि से दूसरी गुणहानि में कितना द्रव्य कम हो जाता है इसका विचार किया गया है। और अनंत रूपनिधा में हमने क्या देखा था, प्रति निषेक कितना द्रव्य कम होता है, ये निषेक रचना में मालूम है ना, कर्मों की निषेक रचना, उसकी बात चल रही है। अनंतर ये श्रेणी की प्ररूपणा चल रही है, समय प्रबद्ध की जो निषेक रचना होती है, पहले निषेक में अधिक द्रव्य, दूसरे में थोड़ा कम कम कम, इसमें जो चय है एक एक प्रति बता देना उसका नाम है अनंत रूपनिधा। और प्रत्येक गुणहानि टू गुणहानि संख्या आधी आधी होती जाती है उसका नाम है परंपरा उपनिधा। मान लेते पहला निषेक 512 का है तो जहां जाकर 256 हो जाता है, आधा होता है, वहां तक एक गुणहानि है। दूसरे गुणहानि समाप्त तो होती है तो उससे भी आधा 128 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, इस तरह से। सेकंड है, प्रत्येक गुणहानि में पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण निषेक होते हैं, इसलिए इतने स्थान जाने पर दुगुनी हानि हो जाती है। दुगुनी कहो दुगुनी कहो एक ही बात है, दुगुनी हानि का ही अर्थ होता है वो आधी रह जाती है, यह बतलाना उक्त कथन का तात्पर्य है। यहाँ तीन अनुयोग द्वार है, प्ररूपण प्रमाण और अल्पबहुत्व। ये परंपरा उपनिधाय में तीन अनुयोग द्वार बताए। एक एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर है, एक एक प्रदेश गुणहानि स्थानांतर है, और नाना प्रदेश गुनहानी शलाकाएं भी है, प्ररूपना समाप्त हुई। क्या कहते हैं, प्रदेश गुनहानी कहो या गुनहानी कहो एक ही बात है। यहाँ निषेक रचना में प्रदेशों की हानि बताते हैं ना, इसलिए इसका दूसरा नाम है प्रदेश गुनहानी, और उसके स्थान बता रहे हैं, इसलिए उसको कहा प्रदेश गुनहानी स्थानांतर। हम उसको अकेले से गुनहानी कहे तो भी चलेगा, अपने प्रकरण में गुनहानी अलग अलग प्रकरणों में आती है। अविभाग प्रतिच्छेदों में भी उसकी अपनी गुनहानी होती है, निषेक रचना में भी उसकी अपनी गुनहानी होती है। ये यव मध्य में तो हमने कितनी बार अलग अलग गुनहानी देखी। तो जो प्रकरण चल रहा है उसमें उसके संदर्भ में ये चल रहा है, इसलिए इसका नाम है प्रदेश गुनहानी स्थानांतर। तो ऐसे अनेक गुनहानी है तो उसके लिए कहा नाना प्रदेश गुनहानी शलाकाएं भी है, शलाकाएं ने उनकी संख्या भी है, यानी नाना गुनहानी है, यानी अनेक गुनहानी प्ररूपणा समाप्त हुई। ये परंपरा उपनिधान का तीन अनुयोग द्वार बता रहे हैं, उसमें ऐसे गुनहानिया है और नाना गुनहानिया है ये बात बता दी, ये हुई प्ररूपणा। अब दूसरा प्रमाण है परंपरा उपनिधा में प्रत्येक गुनहानी गुनहानी के प्रति क्या क्या होता है, तो उसको कहते हैं एक प्रदेश गुनहानी स्थानांतर पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है। पहले क्या देखा था हमने, प्रत्येक गुनहानी कितनी है, पल्य का असंख्यातवा भाग है, तो पल्य का असंख्यात भाग को ही दूसरी पद्धति से कहना है तो असंख्यात मल्टीप्लाइड बाय पल्य का प्रथम वर्गमूल। इसको भी हम देखते हैं। देखो हमने पनट्ठी को देखा था, यानी 65,536, उसको भी हम प लिखेंगे, पनट्ठी को प लिखेंगे। तो पनट्ठी का प्रथम वर्गमूल कितना है, उल्टा लिखेंगे ना यहां से, पनट्ठी का वर्गमूल कितना है 256। हाँ, 256 का वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4। अभी पल्ल्य को हमको, पनट्ठी को हमको 4 से भाग देना है, पनट्ठी को 4 से भाग देंगे। अब ये पनट्ठी के बदले हम 256 का वर्ग लिखेंगे, यहाँ 256 मल्टीप्लाइड बाय 256 बराबर। अब 4 का भाग देंगे तो 256 को हम 4 का भाग देंगे तो यहाँ 64 आ जाएंगे, तो 64 गुना 256 यानी प्रथम वर्गमूल गुना असंख्यात। ऐसे भी हमने निकाला था, अभी पन्नट्ठी को हमको 4 से भाग देना है तो उसी वही संख्या कैसे निकलती है, उसके 4 से लेकर प्रथम वर्गमूल तक सभी संख्याओं की गुणाकार करो, 4 गुना 16 गुना 256 उसका गुणाकार, उसी का नाम है असंख्यात प्रथम वर्गमूल। यानी पन्नट्ठी का चौथा भाग कहो या 4 गुना 16 गुना 256 कहो एक ही बात है, इसलिए यहां ये बात कही कि असंख्यात ये पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल है, यानी असंख्यात गुणा प्रथम वर्गमूल। ये पहले असंख्यात प्रथम वर्गमूल ऐसा लिखेंगे, प्रथम वर्गमूल पल्ले का वो असंख्यात प्रथम वर्गमूल, यानी प्रथम वर्गमूल गुना असंख्यात। हाँ, 256 प्रथम वर्गमूल हुआ और 64 वो असंख्यात हुआ, वो कैसे 4 गुना 16 ऐसा हो गया ना 64 में, जिस संख्या से भाग देंगे वो भी वर्ग रूप संख्या है, वहां से आगे की सभी वर्गों को आपस में गुणा करना। तो ये जिस ओरिजिनल संख्या को हमने भाग दिया था उसका वो उतना भाग आता है। अभी हम यहाँ 2 से भाग देंगे, पनट्ठी को 2 से भाग देंगे तो 2 गुना 4 गुना 16 गुना 256 ऐसी संख्या आएगी। देखो प्रमाण क्या बताते हैं, एक गुणहानि में कितने है तो पल्ले का असंख्यात भाग है, उसी को दूसरी भाषा में कहा असंख्यात प्रथम वर्गमूल, पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल। नाना प्रदेश द्विगुणहानि स्थानांतर शलाका है, यानी नाना गुणहानि शलाका है, यानी कितने नंबर ऑफ गुणहानियां कितनी है। कहते पल्लोपम के प्रथम वर्ग मूल के असंख्यात विभाग प्रमाण, एक गुणहानि कितनी थी पल्ल के असंख्यात विभाग की, अब नाना गुणहानि शलाकाएं कितनी है प्रथम वर्ग मूल का असंख्यात विभाग। जो पल्लोपम के अर्धच्छेदों से तो स्तोक है, अर्धच्छेद कैसे निकालना, किसी संख्या के अर्धच्छेद निकालना है, हाँ दो गुना दो गुना दो गुना दो करेंगे, तो पल्लोप के अर्धच्छेदों से तो स्तोक है, पर पल्लोपम के प्रथम वर्ग मूल के अर्धच्छेदों से बहुत है। अपनी भाषा में हम यही अगर देखना है, पहले तो हमने पनट्टी को देखा था, पनट्टी का चौथा भाग निकाला था, अभी हमको क्या निकालना है 256 का असंख्यातवा भाग निकालना है। तो 256 का ऐसा भाग निकालना है, कैसा, एक कि जो पल्ले के अर्धच्छेदों से तो स्तोक है। पनट्टी का अर्धच्छेद कितना है, देखो अर्धच्छेद कैसे निकालते हैं, चार का अर्धच्छेद है दो, 16 का है चार, 256 का है आठ और पनट्टी का है 16, डबल डबल होता है वर्ग में, अर्धच्छेद डबल होता है। तो ऐसी संख्या कि जो वहां क्या लिखा, पनट्टी के अर्धच्छेदों से तो छोटी है और उसके वर्गमूल के अर्धच्छेदों से बड़ी है, इन बिटवीन 8 एंड 16, ऐसी संख्या होगी वो, जिसको हम 256 का जो कोई भाग कर रहे हैं, 256 को ऐसी संख्या से भाग देना है जो इन बिटवीन 8 एंड 16 होगी, हाँ बीच में होगी, वो संख्या ही दोनों के बीच में होगी। वही पल्लो प्रथम वर्गमूल का असंख्यात भाग ऐसा लिखेंगे, पल्ले के वर्गमूल और डिवाइडेड बाय असंख्यात।
पल्ले के अर्धचंद तो 16
आठ, इन बिटवीन दो के बीच में वो संख्या होगी, फाइनल रिजल्ट उसके दो बीच में होगा।
जो पल्लेपम के अर्धच्छेद से तो पल्ले के अर्धच्छेद तो
16 और 8 के बीच वाली संख्या है, जैसे हम 14 निकाले, 14 संख्या 8 और 16 के बीच वाली है, तो ऐसी संख्या निकालना कि जिसके वो, अभी इसको 14 से भाग दोगे जो कुछ आएगी, अभी यहाँ तो फुल फॉर्म में नहीं आएगी, फुल फिगर्स में अटपटी आएगी। हाँ, प्रलोभ के प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेदन से बहुत है। शंकाकार पूछता है यह किस प्रमाण से जाना जाता है, नाना गुणानी बोले, नाना गुणानी का प्रमाण, पल्ले के प्रथम वर्गमूल का असंख्यात भाग और एक गुणहानि कितनी है पल्ले का असंख्यात भाग, जो असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है, पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल, हाँ एक गुणहानि बड़ी है और नाना गुणहानियां कम है। जैसे अभी हमारे उदाहरण में हम देखते हैं, एक गुणहानि हमने 8 की मानी है और नाना गुणहानि हम 6 मानेंगे, तो टोटल निषेक 48 मानेंगे हम। इसी तरह सागरों में जो बांधते हैं ना कर्म, तो एक एक गुणहानि कितनी बड़ी होती है, अनंत, पहले निषेक में अनंत संख्या है, वो आधे कब कहाँ होते हैं, तो ये पल्ले के असंख्यात में भाग जाकर असंख्यात होता, पल्ले के वर्गमूल का असंख्यात भाग, यानी असंख्यात द्वितीय वर्गमूल कह सकते हैं, परंतु असंख्यात नहीं आएगी एक्चुअली, 16 को असंख्यात का भाग नहीं आएगा क्योंकि वो अर्धच्छेदों की कंपैरिजन की है ना बीच में। अब उसका समाधान करते प्रमाण क्या है इसको। हाँ वो लिखी थी उन्होंने अनंत में है, परंतु मोहनीय में मिथ्यात्व में उन्होंने ये भी बताया कि कुछ कम रहते हैं। अभी उसकी संख्या आएगी जो कुछ यथायुक्त। देखो किस प्रमाण से जाना जाता है, क्योंकि नाना गुणहानि शलाकाओं का विरलन करके, अभी अपने एग्जाम्पल में हमने मान लिए छह, तो नाना गुणहानि शलाकाओं को विरलन किया तो छह बार एक एक लिखे पहले, दुगुणित करने के पश्चात और हरेक के ऊपर दो दो लिखे, उनको परस्पर गुणित करने पर क्या आएगा, अन्योन्य अभ्यस्त राशि, वो कितनी आती है, पल्ल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्ग मूलों की उत्पत्ति होती है। यानी नाना गुणहानि प्रमाण दो संख्या लिखकर आपस में गुणा करना तो पल्ल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्ग मूल आ जाएगा। यह भी किस प्रमाण से जाता है, उसका समाधान बाह्य वर्गणा में प्रदेश विरचित सूत्र से यह जाना जाता है। ये वर्गणा अधिकार जो कुछ होगा उसमें जो कोई सूत्र है उसको ये बता रहे, उसका अर्थ ऐसा है, यथा वहां प्रदेश विरचित अर्थाधिकार में छह अनुयोग द्वार बतलाए हैं। ये भी रेफरेंस दे रहे हैं, ये प्रूव करना है ना, शंकाकार ने पूछा इसलिए उसका रेफरेंस देते हैं, शास्त्र का ही रेफरेंस। तो उसमें छह अनुयोग द्वार बतलाए हैं, जघन्य अग्रस्थिति, अग्रस्थिति विशेष, अग्रस्थिति स्थान, उत्कृष्ट अग्रस्थिति, भागाभाग और अल्पबहुत्व। उनमें जो अल्पबहुत्व है वह तीन प्रकार का बतलाया है, जघन्य पद, उत्कृष्ट पद और जघन्य उत्कृष्ट पद। उनमें से जघन्य उत्कृष्ट प्रदेश अल्प बहुत्व का कथन करते समय अभी वहां क्या क्या लिखा है उसको लिख देते हैं। अंतिम स्थिति में प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है, क करना उसका, तो हुआ है। स्तोक यानी अल्प है। देखो हम ये जो प्रदेश रचना दिखाते हैं यहाँ, स्थिति रचना, निषेक रचना, तो पहले में हमने 512 मान लिए थे, आधे होकर 256 होते हैं, फिर आधे होकर 128 होते हैं, 64 होते हैं, 32 होते हैं, 16 होते हैं, और 16 से घटते घटते ऊपर लास्ट निषेक 9 का है, अंतिम निषेक। ये अपने काल्पनिक फिगर्स है। तो कहते अंतिम स्थिति में प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है, अर्थात अंतिम निषेक में परमाणुओं की संख्या सबसे अल्प है। एक समय प्रबद्ध में जो निषेक रचना होती है उसकी बात चल रही है। इससे अंतिम गुणहानि स्थानांतर में प्रदेशाग्र असंख्यात गुना है। अभी 16 से लेकर 9 तक देखो, यहाँ का चय होता था 32 का डिफरेंस था, 256 यानी द्वितीय गुणहानि में चय 16 हो गया, तृतीय में 8 हुआ, चौथे में 4 हुआ, पांचवे में 2 हुआ, छठे में 1 हुआ। तो यहाँ कितनी कितनी संख्या है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इनकी टोटल कितनी हो जाएगी, करो 9 से 16 तक 100 हो जाती है। अंतिम गुणहानि की संख्या 100 है। देखो ऐसा निकाल सकते हैं, 16 का संकलन में से 8 का माइनस करेंगे तो क्या होगा, वही निकलेगा ना। उसमें माइनस करना, हाँ माइनस करना है। देखो 16 का संकलन धन याद है हम कैसे निकालते थे? जैसे 1 से 8 तक की टोटल हमको निकालनी, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे 8 तक, तो 8 × 9 यानी 8 × 9 और उसको भाग देना 2 से, 1 × 2 से, तो वहां तो 36 संख्या आ जाएगी 8 का संकलन धन। अब 1 से 16 तक निकालना है तो कैसे करेंगे? 16 × 17 और उसको डिवाइडेड बाय 2 तो वो 136 आते हैं। तो 136 में से 36 माइनस कर दो या डायरेक्ट ऐड करते बैठो, 9 + 9 = 10 आगे है देखो, अरविंद भाई कहते 121 पेज पर है लिखा हुआ, यह अंतिम गुनहानी वहां लिखी है, देखिए नीचे से ऊपर पढ़ना, पहले कॉलम में 512 से शुरू होता है वो पहली गुनहानी है, द्वितीय गुनहानी में 256 से शुरुआत होता है ऊपर चले जाओ, तीसरे में 128, 64, 32, 16, 16 से ऊपर 9 तक, तो 9 ये अंतिम निषेक है और इस सबकी टोटल होती है 100। अंतिम गुनहानी की टोटल 100 है पूरा द्रव्य। अब अंत की ओर पहले पहले आ जाएंगे तो डबल डबल हो जाएगा, 100 फिर 200, 400, 800, 1600 और 3200 और सबकी टोटल करेंगे तो 6300 हो जाएगी। देखो ये अल्प बहुत व फिर पढ़ते हैं। अंतिम स्थिति में प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है, उसकी संदृष्टि है 9, इससे अंतिम गुणहानी स्थानांतर, गुणहानी स्थानांतर यानी अंतिम गुणहानी, उसमें प्रदेशाग्र असंख्यात गुणा है वो है 100। अभी हमने मान लिया ना 100 है, इससे प्रथम स्थिति में, स्थिति का अर्थ है निषेक, हमने 48 निषेक मान लिए, पहले निषेक में प्रदेशाग्र असंख्यात गुणा है उसकी संख्या 512, इससे अप्रथम अचरम गुणस्थान गुणहानी स्थानांतर में प्रदेशाग्र असंख्यात गुणा है 5779। ये कैसे निकालना उन्होंने? अप्रथम और अचरम, लास्ट में 9 है और पहला है 512 और 9 521 हो जाएंगे, 63 से में से एक, हाँ में क्या माइनस करेंगे? 512 + 9 5779 आ गए। हाँ इस प्रकार इस अल्प बहुत्व में अंतिम गुणहानि के द्रव्य का निर्देश करके उससे प्रथम निषेक का द्रव्य असंख्यात गुणा है ऐसा कहा है, उसमें अंतिम गुणहानि का द्रव्य पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण अंतिम निषेकों का जितना द्रव्य हो उतना है। क्या कहते हैं? अंतिम गुणहानि का द्रव्य पूरा पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण अंतिम निषेकों का जितना द्रव्य हो उतना है। एक किसी भी गुणहानि का द्रव्य कितना है? उस गुणहानि में जितने निषेक है उसमें कितनी संख्या है परमाणुओं की उतना है। अपनी भाषा में इसी वाक्य को पढ़ेंगे, अंतिम गुणहानि का द्रव्य, अपने अंतिम गुणहानि भी कितने समयों की है? प्रत्येक गुणहानि का समय उतना ही है, 8 समय है ना, और वो यहाँ कितना है एक्चुअल में? पल्ले का असंख्यात अभाव, जो पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है, तो हमारे गणित में तो हमने 8 माने हैं। तो अंतिम गुणहानि का द्रव्य पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण यानी 8 प्रमाण अंतिम निषेकों का जितना द्रव्य हो उतना है। अंत के 8 निषेकों का द्रव्य कितना है? तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इसकी टोटल कितनी है? 100 है, इतना है। अंत के 8 निषेकों की जो टोटल करनी है उसके द्रव्य की उतना है। तो एक्चुअल में अंत में 8 निषेक, अंत में कितने निषेक है गुणहानी में पल्ले के असंख्यात विभाग एक्चुअल में, उनमें जितनी कुछ संख्या होगी परमाणुओं की उसको कहेंगे वो अंतिम गुणहानि का द्रव्य, यानी अपनी अपने गणित में ये अंतिम गुणहानि का द्रव्य है 100, और वो कैसे आया, तो अंतिम निषेक कितने हैं 8 है, उसका जितना द्रव्य हो उतना, यानी 9 + 10 + 11 इस तरह से 16 तक वो 100 आ गए। उसकी संदृष्टि ये 0 दिख रहा है, उसको 9 करना। हाँ हाँ हाँ, वो नीचे के लाइन में भी ऐसा ही दिख रहा है। वो संदृष्टि 9 × 100 = 9। ये संख्या 100 ही आती है ना, इसलिए
संख्या तो ठीक है। अंतिम
एक निषेक नहीं है, अंतिम निषेकों का अंत में, अंतिम गुणहानि में कितने निषेक है तो 8 है, 8 है, 8ों का मिलकर द्रव्य कितना है, हमने देखा था अंत के 8 जो है, आपके पेज नंबर 121 पर देखना, ये अंतिम गुणहानि के कितने निषेक है तो 8 है, उसका टोटल द्रव्य क्या है, उसकी टोटल कितनी होती है तो 100 होती है, 9 + 10 + 11 अभी हमने निकाला था ना संकलन धन के द्वारा, ये उसकी टोटल 100 आती है। तो यही यहाँ बताना चाहते हैं, अंत के जो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण निषेक है उनमें जितना जितना द्रव्य है उसकी टोटल करेंगे, जो अपनी संदृष्टि में हमने 100 मान लिया है। उसी को पल्ल के यानी असंख्यात प्रथम वर्गमूल कहा, 100 को। और प्रथम निषेक कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि मात्र अंतिम निषेकों का जितना प्रमाण हो उतना है। प्रथम निषेक 512 है ना, तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी आती है यहाँ, नाना गुणहानि शला का 6 है, तो 6 बार आपस में गुणा करना, 32 आ जाएगी, नहीं 64 आ जाएगा, हाँ 64 में से अंतिम राशि अंतिम निषेकों का जितना प्रमाण हो उतना है, यानी 64 को 9 से गुणा करने और उससे कम 574 आते हैं 64 × 9, उसमें कम 512 है। अंतिम निषेक अब कहते हैं पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण डेढ़ गुणहानियों से, चूंकि कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी अन्यथा बन नहीं सकती। डेढ़ गुणहानि का प्रमाण यहाँ 12 है। क्या कहते हैं पल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्ग मूलों प्रमाण डेढ़ गुणहानि, देखो एक गुणहानि के भी पल्ल्य का असंख्यात भाग है तो उसको भी असंख्यात प्रथम वर्गमूल कहा, और डेढ़ गुणहानि को भी उतना ही कहा, उसका प्रमाण थोड़ा अलग होगा फिर भी वो असंख्यात प्रथम वर्गमूल। हाँ, इससे चूंकि कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी अन्यथा बन नहीं सकती, यानी ये अन्योन्य अभ्यस्त राशि कितनी है 64 है, कुछ कम करें तो उसमें जो कुछ होगा, अतः इसी से जाना जाता है कि नाना गुणहानि शला का है पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेदों से बहुत है, बहुत होते हुए भी वे प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेदों से विशेष अधिक ही है, दुगुनी नहीं है। हमने देखा था ना बिटवीन 8 और 16 के बीच में हमने देखा था उसको अपनी संख्या में, परंतु वो दुगुनी इतनी नहीं है, कम है, क्योंकि उन्हें दुगुनी मान लेने पर अन्योन्य अभ्यस्त राशि के पल्लोपम के प्रमाण प्राप्त होने का प्रसंग आता है, क्योंकि ये हाँ 16 मानेंगे तो वो तो पल्ले ही हो जाएगा ना, पपनटी हो जाएगी, जैसे अपने गणित में पल्लोपम की वर्ग शलाकाओं के अर्धच्छेद से लेकर पल्लोपम के द्वितीय वर्गमूल के अर्धच्छेद पर्यंत सब अर्धच्छेदों की शलाकाओं को मिलाकर पल्लोपम के प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेदों में मिलाने पर नाना गुणानी शलाकाओं का प्रमाण होता है। देखो क्या कहते हैं, अपना गणित फिर ले लेंगे। हाँ, अपनी द्विरूप वर्गधारा है ना, उसकी बात करेंगे। द्विरूप वर्गधारा में पहला स्थान है 4, दूसरा है 16, तीसरा 256 और चौथा है 85। अभी इनके जो कथन है उस इसी में हम देखेंगे, प्रथम वर्गमूल द्वितीय वर्गमूल फिर इसको पढ़ेंगे। देखो नीचे से दूसरी लाइन, पल्लोपम की वर्ग शलाकाओं के अर्धच्छेद से लेकर, अभी ये पल्लोप के बदले हम पनट्ठी की वर्ग शलाका का अर्धच्छेद कितना होगा, देखो वर्ग शलाका किसको कहते हैं, ये पहला नंबर का वर्ग, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 तो वर्ग शलाका है और उसका अर्धच्छेद हो जाएगा 2, तो पनट्ठी के वर्ग शलाका 4 उसका अर्धच्छेद है 2। वहां से लेकर अभी आगे पढ़ेंगे, पल्लोपम के द्वितीय वर्गमूल के अर्धच्छेद पर्यंत, पल्ल का द्वितीय वर्गमूल, पहला वर्गमूल है 256 और द्वितीय वर्गमूल है 16, 16 के अर्धच्छेद होते हैं 4। तो फिर पढ़ देंगे, पनट्ठी के वर्गशलाका के अर्धच्छेद से लेकर पनट्टी के द्वितीय वर्गमूल के अर्धच्छेदों तक सब अर्धच्छेदों की शलाकाओं को मिलाकर पल्लोपम के प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेदों में मिलाने पर, अभी 256 के अर्धच्छेद है 8, इन अदर लैंग्वेज ये सभी पनट्टी की बात करें ना, मैं पनट्ठी के जो प्रथम वर्गमूल है उसके अर्धच्छेद से, अभी पीछे आओ तो पनट्ठी की जो वर्ग शलाका 4 उसके अर्धच्छेद है 2, दो संख्या तक इन्हें 2, 4 और 8 सबकी टोटल करना, कितनी हुई 14, तो 14 ये क्या है, ये किसका प्रमाण बता रहे, नाना गुणहानी शलाका हमने 6 मानी है, परंतु एक्चुअल में कैसे निकालना, तो हमने वो पनट्ठी के आधार से वो संख्या बतलाने की कोशिश की, ऐसे एक्चुअल में क्या है, नाना गुणहानी शलाका नहीं नहीं वो तो हमने मानी है, ये तो ये फिगर अलग है, क्योंकि ये मैंने उठाई है बताने के लिए, अब ये इसको भूल जाओ, अब एक्चुअल में जो पल्ले होगा, पल्ले द्विरूप वर्गधारा में आता है, ये मालूम है। देखो ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते पहले 256 आगे पनट्टी बादल इकट्ठी करते करते पहले में आवली आएगा, आवली के कितने स्थान आगे जाने पर अंगुल आता है, ये अंगुल के पहले पल्ले आता है, तो पल्ले आता है तो पल्ले को फिर वर्ग किया, उसका वर्ग किया, उसका वर्ग किया, ऐसे वो सारी आगे द्विरूप वर्गधारा है, हमें तो पल्ले से मतलब है, तो पल्ले का पल्ले की वर्गशला का कितनी, वो भी विशिष्ट असंख्यात ही आती है, क्योंकि असंख्यात बार वर्ग करने पर पल्ले आया था, है ना। तो पल्ले की जो कुछ अभी इसको हम वर्गशलाका को वह कहेंगे, पल्ले की वर्गशलाका को वह कहेंगे। हाँ, उसकी वर्गशलाका का अर्धच्छेद भी असंख्यात है, वो वचे लिखेंगे उसको। अब यहां से लेकर आगे जितने वर्ग स्थान है द्वितीय वर्गमूल तक के, वहां तक की सारी जो संख्या है हाँ, उसको टोटल करना और वो फिर इसके अर्धच्छेद में मिला देना। प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेद तक सभी सभी की टोटल करना, जैसे हमने 2, 4 और 8 की टोटल की थी, वैसे वहां भी सब अर्धच्छेदों की टोटल करना।
इस प्रथम वर्गमूल के उसके पहले क्या?
प्रथम वर्गमूल तक के सभी, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया, पहले तक ले लिया और वो प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेदों में मिला दिया। इन अदर लैंग्वेज, प्रथम वर्गमूल तक के सभी अर्धच्छेदों की टोटल करो, उसके वर्गशलाका के अर्धच्छेद से लेकर उसके प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेदों तक के सबकी टोटल करो, ये नाना गुणहानी शलाका आएगी।
हम समझे समझे हम बोलेंगे तो पल्ले की वर्गशलाका जो है
हाँ,
वो संख्या ले ली
हाँ,
और वो अपने पीछे गए उस संख्या से लेके
उस संख्या के अर्धच्छेद से
अर्धच्छेद
से लेकर
इसके प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेद
तक के सभी अर्धच्छेदों की टोटल करनी, वो नाना गुणहानी शलाका है। ये जो अभी निषेक रचना है उसकी एक्चुअल में उतनी होती है।
ये तो अंतिम जो वर्गमूल है वहाँ की जो अर्धच्छेद जो भी है
हाँ,
उसका प्रथम वर्गमूल तक की जो टोटल है वो, और वो शलाका के अर्धच्छेद जो है उसको मिला देने पर नाना गुणहानी शलाका है।
शलाका नहीं, कौन सी शलाका?
पल्ले
की वर्गशलाका का अर्धच्छेद प्लस आगे वाला आगे वाला आगे वाला सब जितने भी
ये पहला और अंतिम जो वर्गमूल है
हाँ,
वहाँ की जो अर्धच्छेद
अर्धच्छेदों की टोटल करनी, सबकी टोटल करनी, वो नाना गुणहानी शलाका होगी।
ये तो हम लोग तो पल्ले का संख्या एक गुणहानी में जो पल्ले का संख्या
एक गुणहानी में हाँ,
तो ये जो हम लोग तो ये नाना गुणहानी देखते हैं वो भी पल्ले का दूसरा कोई असंख्या का प्रतीत होगा
हाँ, वो बताए ना उन्होंने नाना गुणहानी जो है वो पल्ले के वर्गमूल का असंख्या, वो तो उन्होंने बता ही दिया था पहले। अब आगे बढ़ेंगे शंका, इनको कैसे मिलाया जाता है? कहते हैं पल्लोपम की वर्गशला का प्रमाण वर्ग से लेकर पल्लोपम के द्वितीय वर्गमूल तक इन वर्गों की शलाकाओं का विरलन कर, अभी अपने गणित में अपने को पनट्टी के हम कहेंगे, पनट्टी की वर्गशला का 4 वाला जो वर्ग है वहां से लेकर पल्लोपम के द्वितीय वर्गमूल तक इन वर्गों की शलाकाओं का विरलन कर दुगुना करके अन्योन्य अभ्यस्त राशि से पल्लोपम के प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेदों को अपवर्तित करने पर जो लब्ध हो उसे रूपोण भागार से गुणित करने पर इच्छित अर्धच्छेद शलाकाओं का योग होता है। ये और ज्यादा डिफिकल्ट है।
लेकिन अपन एक ही मेथड समझे, मतलब हम अपने लिए
हाँ,
वो 2, 4 और 8, 14 जो आए
14 आए
उसके लिए समझ लीजिए पल्ले की वर्ग शलाकाओं के अर्धच्छेद से प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेदों को जोड़ने पर नाना गुणहानी शलाका आती है।
देखो देखो यहाँ क्या क्या, पल्लोपम की वर्गशला का प्रमाण वर्ग है 4, अभी अपने पनट्टी के भाषा में करेंगे।
पल्ले के वर्गशला का
4
उसके अर्धच्छेद से
वर्ग प्रमाण वर्ग से लेकर पल्लोपम के द्वितीय वर्गमूल तक इन वर्गों की शलाकाओं का वर्गों की शलाका है, नहीं समझे? पनट्ठी की वर्ग शलाका चार है, वो इटसेल्फ वर्ग है, द्विरूप वर्ग धारा में आता है, उसकी वर्ग शलाका एक है और उसका वर्ग है, उसकी वर्ग शलाका है, द्वितीय वर्गमूल है ना इसका, 16 है, पनट्ठी का द्वितीय वर्गमूल 16 है, उसकी वर्ग शलाका 2 है। अब इनके टोटल करेंगे, 2 और 1 3 है, और 3 को विरल अंक कर दुगुना करके यानी उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि आ गई 8। उस राशि से पल्लोपम के प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेदों को अपवर्तित करने पर, प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेद आते हैं यहाँ 16 है ना, ये 2 4 8 है, इसके अर्धच्छेदों को अपवर्तित करने पर अभी यहाँ क्या है, इमीडिएट नेक्स्ट वर्ग है इसके, फिर भी हम देखते हैं। हाँ, बाधा इकट्ठी लेनी पड़ेगी। अन्य अभिष्य राशि से पल्लोपम के प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेदों को अपवर्तित करने पर जो लब्ध हो उसे रूपोण भागहार से गुणित करने पर इच्छित अर्धच्छेद शलाकाओं का योग होता है। टोटल जो हमको निकालनी थी, हमको जो टोटल निकालनी थी उसकी बात चल रही। मेथर तो यही है अभी, यहाँ तो फुल फिगर नहीं आएगी क्योंकि ये और ले है हमने 14 वाली। अब आगे बढ़ेंगे इसको।
पहले वाले मेथड में, पल्ले की जो वर्ग शलाका है,
पल्ले की वर्ग शलाका है, हमने पनट्ठी मान ली है,
चार
वर्ग शलाका है, उसके अर्धच्छेद
वो संख्या वर्ग धारा में पीछे आने पर जहाँ पर आए, उसके
अर्धच्छेद
से लेके
प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेदों तक के सभी टोटल करना है। देखो इन अदर लैंग्वेज हमने क्या किया था, पहले चार से लेकर प्रथम वर्गमूल तक के सभी संख्याओं को गुणा किया था, अब सभी संख्याओं के अर्धच्छेदों को प्लस कर रहे हैं। संख्या तो हमने पहले क्या किया था, 4 × 16 × 256 किए थे, अब क्या कर रहे हैं, 4 × 16 × 256 इनकी टोटल कर रहे हैं, उसको नाना गुणानी शलाका। शंका, नाना गुणानी शलाकाएं पल्लोपम की वर्ग शलाकाओं के अर्धच्छेदों से हीन, पल्लोपम के जितने अर्धच्छेद हो उतनी ही है, क्या कहते हैं, कम व अधिक नहीं है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? अब दूसरी भाषा में कह रहे, क्या कह रहे, पहले तो वहां तक की टोटल कर दिए, अब क्या कह रहे, पल्ले की अर्धच्छेदों की जो वर्ग शलाका के जो अर्धच्छेद, हमने पनट्ठी की बात ली थी, पनट्ठी के वर्ग शलाका कितनी है, 4 है, उसके अर्धच्छेद है 2 और पनट्ठी के अर्धच्छेद है 16, तो 16 में से 2 कम के तो 14 है, वही आई ना बात, उतने ही है, कम ज्यादा नहीं है। आपको शायद याद होगा हमने पहले बहुत देखा था, अभी कर्मकांड सीख के बहुत 4-5 वर्ष से कितने हुए वर्ष, तो उसमें 6 − 6 लिखते थे हम, 6 ने पल्ले के अर्धच्छेदों को 6 कहते हैं और पल्ले के वर्गशला के अर्धच्छेद को वच्छे कहते हैं, तो नाना गुणहानी कितनी होती है, 6 − 6। पहले उन्होंने वो टोटल करने की बात की थी, ये डायरेक्ट उत्तर आया ऐसा, पल्ले के अर्धच्छेद माइनस पल्ले के वर्ग शलाका के अर्धच्छेद, हमने पनट्ठी का उदाहरण देखा ना, पनट्ठी के अर्धच्छेद 16 है, माइनस उसकी वर्ग शलाका 4, उसके अर्धच्छेद ये 6 माइनस बचे है। दिस इज इजी है, और कर्मकांड में तो यही डायरेक्ट बात बताई थी, 6 माइनस बचे, इन्हें 16 माइनस 2 14 आई। देखो नाना गुनहानी शलाका है, शंका फिर पड़ रही हूँ, पल्ल्योपम की वर्ग शलाकाओं के अर्धच्छेदों से हीन पल्ल्योपम के जितने अर्धच्छेद हो इतनी ही है। अभी उसको संदृष्टि के लिए नाम देने के लिए हम वर्ग शलाकाओं के अर्धच्छेदों को हम वचे कहेंगे, ये शास्त्र की संदृष्टि, हमने कुछ नई नहीं की, गोमट सार में आते हैं। और पल्ल्योपम के जितने अर्धच्छेद हो उसको कहते हैं 6। यह किस प्रमाण से जाना जाता है, यानी 6 माइनस वचे, नाना गुनहानी कितनी होती है, 6 माइनस वचे, यह कैसे जाना, उसका समाधान यह अविरुद्ध आचार्य के वचन से जाना जाता है, बस यही उसके लिए प्रमाण है। विशेषार्थ नहीं, इस प्रकार ये ऊपर एक लाइन रहेगी, इस प्रकार मोहनीय की नाना गुणहानि शलाकाओं के प्रमाण की प्ररूपणा की, ये मोहनीय के द्रव्य की बात हुई, नाना गुणहानि शलाका उसमें ज्यादा होगी क्यों, वो सत्तर कोड़ा कोड़ी सागर वाली है ना, इसलिए, और बाकी जो है उस प्रमाण में कम होगी, क्योंकि जहाँ 30 कोड़ा कोड़ी सागर की है उसमें उस प्रोपोर्शन में वो कम होगी, वो स्थिति उतनी है। अभी इसमें जैसे वहाँ स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी थी वो कम हो गई, तो उस प्रोपोर्शन में नाना गुनहानी शलाका है, क्योंकि गुनहानी तो उतनी की उतनी रही, गुनहानी उतनी रही ना, गुनहानी से भाग देना पड़ेगा उसको, भागाकार सेम रहेगा उसका। हाँ, क्योंकि मैक्सिमम है मोहिनी में, बाकी अपनी अपनी ज्ञानावरण वगैरह की वो अलग होगी, स्थिति के लिए स्थिति को गुनहानी से, गुनहानी तो वही से उतनी की उतनी है सबके लिए, गुनहानी का प्रमाण उतना ही है और स्थिति अलग अलग।
गलत आंसर बोल रहे हैं, 14 में 3/7 पे गुणा किया 6 आती है, वो नहीं होगा।
हाँ,
गलत आंसर बोल रहा हूँ, 14 है जिसे वो नहीं,
क्योंकि गुनहानी के वो आपका जो है प्रोपोर्शन 3/7 वो तो पूरी स्थिति में पड़ेगा, उसको गुनहानी से भाग देना पड़ेगा, हर एक को अपनी अपनी गुनहानी से निकालेंगे, वो आएगी शायद बात आ जाएगी। अभी इसी का विशेषार्थ दोबारा लेते हैं, देखो यहाँ परंपरा उपनिधा के प्रसंग से एक गुनहानी के निषेकों की संख्या बतला कर, एक गुनहानी में निषेक कितने अभी हमने देखे थे, हाँ एक गुनहानी में 8 निषेक, और एक्चुअल में पल्ले के असंख्यात विभाग, जिसका प्रमाण है असंख्यात प्रथम वर्गमूल, पल्ले के असंख्यात प्रथम वर्गमूल, वो बतला कर मोहनीय की नाना गुनहानियों का ठीक प्रमाण कितना है, यह युक्ति पूर्वक सिद्ध करके बतलाया गया है। वो 6 माइनस वो 6 अभी हमने देखा था, अपनी संदृष्टि में बोलेंगे ना, हम बार बार उतना सारा बोलना है। साधारणतः मोहनीय की गुनहानी शलाकाएं पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल के असंख्यात भाग प्रमाण मानी जाती है। वो 6 माइनस वो 6 का ही प्रमाण कितना है, तो प्रथम वर्गमूल का भी असंख्यात भाग, पर इससे वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं होती, इसलिए इस संख्या का ठीक ज्ञान कराने के लिए बतलाया गया है कि यह संख्या पल्ल्योपम के अर्धच्छेदों से तो कम है, पर पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेदों से अधिक है। इतना क्यों है, इसी बात को सिद्ध करने के लिए युक्ति दी गई है। युक्ति वर्गणाखंड के प्रदेश विरचित अल्प बहुत्व के आधार से दी गई है। वहां बतलाया है कि अंतम गुणहानि के समूचे द्रव्य से, समूचा द्रव्य ने हमने मान लिया 100 प्रहां, अंतिम गुणहानि के टोटल समूचा द्रव्य है हमने मान लिया, अपने इसमें 100 मान लिया है ना हमने। प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेक का द्रव्य असंख्यात गुना है, जो हमने 512 माना था। यहां तीन बातें ज्ञातव्य है, यानी जानने लायक है। अंतिम गुणहानि के द्रव्य का प्रमाण, जो हमने 100 देखा। प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेक का द्रव्य का प्रमाण हमने 512 देखा। और इन दोनों के तारतम्य का वास्तविक ज्ञान, यह असंख्यात गुना है ना उसका, यहां तो 5 गुना है परंतु वास्तव में कितना है, तो असंख्यात गुना है। एक गुणहानि में पल्ल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण निषेक होते हैं, जो हम 8 माने थे हमने। साधारणतः इन निषेकों के प्रमाण को अंतिम निषेक के द्रव्य से गुणा कर देने पर अंतिम गुणहानि का द्रव्य होता है। यथार्थतः इसमें अंतिम गुणहानि के प्रचय द्रव्य का जितना प्रमाण होगा उतना और मिलाना पड़ेगा, तब अंतिम गुणहानि का समस्त द्रव्य प्राप्त होगा। क्या कहते हैं, यथार्थ में क्या है, इन निषेकों के प्रमाण को, ये 8 नहीं, इन निषेकों के प्रमाण ने एक गुणहानि में 8 है, इनको 72 अंतिम निषेक के द्रव्य से गुणा कर देने पर अंतिम गुणहानि का द्रव्य होता है। यथार्थ इसमें अंतिम गुणहानि के प्रचय द्रव्य का जितना प्रमाण होगा उतना और मिलाना पड़ेगा। ओ ये अंतिम गुणहानि निकालो, भी मैं पार्टी पर नहीं बताती, पुस्तक में ही बताएंगे। 121 नंबर का पृष्ठ, अभी अंतिम निषेक कितना है, 9 का है, और अंतिम गुणहानि कितनी है, तो 972 हो गए ना, 8 निषेक है उसमें, तो 8 निषेक है, परंतु उसमें प्रचय द्रव्य कितना है, 8 ही ज्यादा हो गए, कैसे हाँ 9 से 10 1 से बड़ा है, और 9 से 11 2 से बड़े हैं, ये टोटल हम हर जगह 9 लिखो, और उसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 1+2+3+4 इस तरह से हमको 7 बार ऐड करना पड़ेगा, यानी 7 का संकलन धन है वो प्रचय धन है वहाँ का। प्रचय कहो या चय कहो एक ही बात है, 7 56 / 2 28 हो गए ना, 28 मिलाना पड़ेगा 72 में। कैसे निकाला, देखो ये टेबल देखना, 121 नंबर का, ये 9 फिगर कायम रखकर गुणहानि के कितने हैं, 8 है, तो 9 8 72, ये तो 9 संख्या लेकर हो गया। अब उसमें एक्स्ट्रा कितना है, तो 10 में 1 मिलाया है, 11 के लिए 2 मिलाए हैं, 12 के लिए 3 मिलाए हैं, ऐसे 16 के लिए 7 मिलाए हैं, तो 1+2+3 ऐसे 7 तक की टोटल करना, उसको कहते 7 का संकलन धन निकालो, तो 7 × 8 हाँ भागीले भाग करना 2 का, बेचो का 8 7 28 28 आए, पहले कितने आए थे, 9 8 72 प्लस 28 ये 100 हो जाएगी। ये 9 संख्या ली और गुणहानि से मल्टीप्लाई किया, प्रचय द्रव्य का अर्थ होता है चय धन, यानी सभी चयों की टोटल, प्रचय या चय एक ही शब्द है। यहाँ डायरेक्ट सब भी बता दिया है ना, तो वी हैव टू डिराइव इट। 72 और 28 100 हो जाएगा। हाँ, तब अंतिम गुणहानि का समस्त द्रव्य प्राप्त होगा। यह तो अंतिम गुणहानि का द्रव्य है। यहां तक समझ में आया? अंतिम गुणहानि का 100 कैसे निकाला? अंतिम निषेक का द्रव्य मल्टीप्लाइड बाय गुणहानि के जितने निषेक है 8, वो तो 9 के हिसाब से 8 की संख्या निकाली, परंतु वो बढ़ता हुआ है ना, ऊपर से नीचे की ओर अगर हम देखेंगे तो ये संख्या बढ़ रही है। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इसकी टोटल करनी चाहिए। हमने तो 9-9 की संख्या लेकर टोटल की है, तो एक्स्ट्रा जो उसमें एक एक अधिक बढ़ता गया है, 1+2+3+4+5+6+7, 7 बार बढ़ा ना, 8 निषेक थे पहले की, 9 की 9 ही वैल्यू रही, तो 7 बार एक एक बढ़ गया, तो वो 7 का संकलन धन निकालते, तो 7 के आगे वाली फिगर 8 से गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे तो उसका संकलन धन आता है। तो ये 100 हो गया अंतिम गुणहानि का द्रव्य। प्रथम गुणहानि के प्रथम निषेक का द्रव्य अंतिम निषेक के द्रव्य को नाना गुणहानि शलाकाओं की कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि से गुणा करने पर प्राप्त होता है। यह प्रथम निषेक का द्रव्य है। प्रथम निषेक का द्रव्य जो हमने 512 देखा था, कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि से उसको गुणा करना है। अभी अंतिम निषेक है 9 का और कुछ कम अन्योन्य 3, 9, 3 60 से भी कुछ कम लेना पड़ेगा, 954 540 आते हैं।
अन्य राशि 64 हुई है, हाँ, माइनस 1 कर दिया, तरह से कुछ कम हो गया, हाँ, तो कर दिया।
नहीं, 6300 उसकी बात नहीं की, पहले निषेक की बात कर रहे। ये तो पहले गुणहानि का द्रव्य निकालने का तरीका पता है, उसमें से एक कम कर दो, अन्योन्य अभ्यस्त राशि से एक कम कर दो और उसे 100 को गुणा करो, वो तो टोटल द्रव्य आ जाएगा 6300 टोटल द्रव्य, उसकी बात नहीं है। पहला निषेक 512 की बात चल रही है, तो 512 के लिए अन्योन्य अभ्यस्त राशि में से कुछ कम करना पड़ेगा। हम 512 को ही 9 से डिवाइड करके देखेंगे ना, 9 5 45 9 7 63 अबाउट 57, तो 64 के बदले 57 कुछ कम अन्योन्य अभ्यस्त राशि को ये 9 से गुणा करेंगे। दूसरी भी बहुत सारी पद्धति है इसमें, जैसे 6 बार करना है ना, 6 हमारी नाना गुणहानि है, तो 5 बार डबल डबल करो, एक बार डबल किया तो 200 आ गए, दूसरी बार 400 आए, तीसरी बार 800 आए, चौथी बार 1600 आए, पांचवी बार 3200 आए, तो ये 3200 है पहले गुणहानि का टोटल द्रव्य। ये इस तरह अलग अलग पद्धतियां हैं सारी उसकी। ये डायरेक्ट टोटल द्रव्य निकालना है सभी गुणहानियों की टोटल, तो अन्योन्य अभ्यस्त राशि नाना गुणहानि शला का 6 है, तो 6 बार 2 को आपस में गुणा करो तो 64 आती है, उसमें से 1 माइनस करो 63 आते हैं, और अंतिम गुणहानि 100 को मल्टीप्लाई करो तो 6300, वो टोटल समय प्रबद्ध का द्रव्य आता है। यह प्रथम निषेक का द्रव्य है। नीचे से छठी लाइन पढ़ रहे, जैसा कि प्रदेश विरचित अल्प बहुत से ज्ञात होता है, अंतिम गुणहानि के द्रव्य से द्रव्य हुआ है, द्रव्य करना उसको। अंतिम गुणहानि के द्रव्य से प्रथम निषेक का द्रव्य असंख्यात गुणा है। यह बात तभी बन सकती है जबकि डेढ़ गुणहानि गुणित पल्ल्योपम के असंख्यात प्रथम वर्गमूल के प्रमाण से नाना गुणहानियों की अन्योन्य अभ्यस्त राशि असंख्यात गुणी मान ली जाती है। अतः यह असंख्यात गुणी है। इससे ज्ञात होता है कि नाना गुणहानी शलाकाए पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल के अर्धच्छेदों से साधिक है। हमने वो 14 निकाले थे ना, अभी अपनी गणित में नहीं 14, वो तो समझाने के लिए हमने वो पनट्ठी का उदाहरण लिया था, वो संदृष्टि इसमें नहीं लेना। वो हमने यहाँ के नाना गुणहानी शलाका हमने 6 मानी है, उसका उसका संबंध नहीं निकालना। अब 7 रूपों का विरलन करके मोह, अभी 7 रूप यानी 7 बार एक एक लिख दो। मोहनीय की नाना गुणहानी शलाकाओं को समखंड कर देने पर प्रत्येक एक एक के प्रति 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपमों की गुणहानी शलाकाएं प्राप्त होती है। यानी 10 कोड़ाकोड़ी कोकोसा, उसकी जितनी नाना गुणहानी शलाकाएं होगी, गुणहानी शलाकाएं प्राप्त होती है। जो पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल से नीचे तीसरे, छठे, नौवे, बारहवे और पंद्रहवे आदि इस प्रकार तीसरे से लेकर उत्तरोत्तर 3 अधिक वर्गों के अर्धच्छेदों के योग रूप होती है। यानी हमने देखा ना अर्धच्छेदों की टोटल करनी है, तो कहां तक के वर्गमूलों के अर्धच्छेदों की टोटल करनी है। हाँ, तो यहां लिखे ना तीसरे, छठे, नौवे, बारहवे वगैरह वगैरह, 3, 6, 9, 12, 15, 3-3 का डिफरेंस है ना, उत्तरोत्तर 3 अधिक वर्गों के अर्धच्छेदों के योग रूप होती है। देखो प्रत्येक एक के प्रति 10 कोड़ाकोड़ी सागरोपमों की गुणहानी शलाकाएं प्राप्त होती है। सभी टोटल गुणहानी शलाकाएं जो है वो विरलित की ना 7 में, तो 10 कोड़ाकोड़ी की जितनी है उतनी आएगी हर एक के प्रति, यानी 1/7 आ जाएगी। जैसे हमने टोटल 14 निकाली थी पनट्ठी के लिए, पनट्ठी की बात की, अब यहाँ क्या, जो कि पल्ल्योपम के प्रथम वर्गमूल से नीचे, नीचे का तीसरा वर्ग, तीसरा वर्गमूल, छठा वर्गमूल, नौवां वर्गमूल, बारहवां वर्गमूल और पंद्रहवां वर्गमूल, इस प्रकार तीसरे से लेकर उत्तरोत्तर 3 अधिक वर्गों के अर्धच्छेदों के योग रूप होती है। यह उनके वर्गच्छेदों का वर्ग यानी अर्धच्छेद करना और उसका योग करना, उसकी टोटल करना। हाँ हाँ, देखो देखो पूरा पढ़ेंगे हम। उनमें से 3 अंक के प्रति प्राप्त द्रव्य के अर्धच्छेदों का योग करने पर 30 कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण स्थिति वाले ज्ञानावरण कर्म की गुणहानी शलाकाएं, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, आठवां, नौवां आदि एकांतरित 2-2 वर्गों के अर्धच्छेदों के योग मात्र होती हैं। ये कुछ समझ में नहीं आया, इतना ले सकते हैं कि हम ये 7 के बदले अभी हम 3 वाले जो है 30 कोड़ाकोड़ी सागर वाले, वो ज्ञानावरण की होगी, उसके लिए जो कुछ हो वर्ग शलाकाओं की टोटल करनी है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अर्धच्छेदों का प्रमाण अलग अलग हो जाएगा ना वहां की संख्या का। और जो ज्ञानावरण की हमने 30 देखी, दर्शनावरण की भी 30 होगी, अंतराय की भी 30 होगी, नाम गोत्र की 20 है, उसके लिए 20 करेंगे। यानी उनके अर्धच्छेदों का योग के लिए वो गणित अलग अलग होगा सबका, क्योंकि अर्धच्छेदों की उस प्रोपोर्शन में नहीं होगा, 3/7 अर्धच्छेद नहीं होगी उसके, वो उसका प्रोपोर्शन बदलेगा, इसीलिए ये अलग अलग लिखा है सब। इसी प्रकार दर्शनावरणीय वेदनीय अंतराय कर्मों की नाना गुणहानि शलाकाएं कहनी चाहिए, क्योंकि ज्ञानावरणीय के समान उनकी स्थिति होती है। दो दो अंकों के प्रति प्राप्त नाना गुणहानि शलाकाओं का जितना योग हो उतनी नाम व गोत्र कर्म की नाना गुणहानि शलाकाएं होती। इन दो के प्रति जितनी टोटल है उसके नाम गोत्र की, क्योंकि उसकी स्थिति जो है 20 कोड़ा कोड़ी सा है, क्योंकि उनकी स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम प्रमाण है। एक अंक के प्रति प्राप्त राशि के संख्यात विभाग प्रमाण आयु कर्म की नाना गुणहानि शलाकाएं हैं। आयु तो संख्यात वर्षों की होगी या असंख्यात भी होगी तो भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर तो किसी की आयु नहीं है, अधिक से अधिक 33 सागर की होगी, तो 33 सागर ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर का कितवा भाग है? संख्यात्वा भाग है। 10 कोड़ा कोड़ी भी सागर को कॉमन रखो ना, 10 कोड़ा कोड़ी ये संख्यात गुणा हुआ ना, 33 से संख्यात गुणा होगा, तो इसीलिए कहते हैं
उस 40 चारित्र मोहनी की निकालनी हो,
तो चार के लिए लेना, और कषाय उनकी जो है वो
जो हम लोग बोले ना कि जो 4/3/7 कर लेंगे, 3/7 नहीं है, तो ये तरीका है, ये
हाँ ये यही तरीका है, इसके अर्धच्छेद निकालने पड़ेंगे। उसकी टोटल, उसके लिए उन्होंने वो बातें बताई।
इसका अर्धच्छेद निकालना पड़ेगा
10 कोड़ा कोड़ी सागरों के नाना गुणहानि शलाका, ऐसे डायरेक्ट बताया उन्होंने, टोटल नाना गुणहानि शलाका बताई 7 के लिए। अभी उसको वो विरल कर देना और हरेक के ऊपर 10-10 कोड़ा कोड़ी सागरों के नाना गुणहानि शलाकाएं दी, नाना गुणहानि शलाकाएं बांट दी उन्होंने, और फिर उनका योग कहा, उनका योग यानी उनकी टोटल, उनका जोड़, योग यानी जोड़। अभी 120 पृष्ठ पर आए हम, आयु कर्म की कितनी है? तो एक अंक के प्रति प्राप्त यानी जिस 10 कोड़ा कोड़ी सागर की जितनी नाना गुणहानि शलाकाएं होगी, वो जो अंक है उसके संख्यात्व भाग प्रमाण आयु कर्म की नाना गुणहानि शलाकाएं। चार अंकों के प्रति प्राप्त राशि का जितना योग हो उतनी चार कषायों की नाना गुणहानि शलाकाएं होती है, ये आपका प्रश्न है। हाँ, चारों की, इसका कारण सुगम है क्योंकि वो 40 ही कहलाते ना, 40 कोड़ा कोड़ी की उसकी स्थिति। इसी प्रकार पल्योपम मात्र स्थिति वाले कर्मों की नाना गुणहानि शलाकाओं को त्रैराशिक क्रम से उत्पन्न कराना चाहिए। त्रैराशिक यानी इसकी इतनी होती है तो इसकी कितनी होती है, पल्ले जितने की कितनी होती है। ज्ञानावरणीय की अन्योन्य अभ्यस्त राशि से डेढ़ गुणहानिया असंख्यात गुणी है। इससे और आगे कहे गए प्रदेश विरचित अल्प बहुत्व से जाना जाता है कि ज्ञानावरणीय की नाना गुणहानि शलाकाएं पल्योपम के द्वितीय वर्गमूल के अर्धच्छेदों से विशेष अधिक है। ज्ञानावरणी की बात चली, पहले हमने जो देखी थी वो मोहनीय की देखी थी, 14 निकाली थी तो मोहनीय की है। अब यहां कहते हैं ज्ञानावरणी के नाना गुणहानि शलाकाएं पल्योपम के द्वितीय वर्गमूल, अपने पन्नट्टी के निकाला था वो द्वितीय वर्गमूल 16 हो जाएगा, उसके अर्धच्छेदों से विशेष अधिक है, चार से ज्यादा होगा। यथा अंतिम निषेक सबसे स्तोक है, वहां क्या लिखा है उसको उद्धृत करते रेफरेंस दे रहे, उससे प्रथम निषेक असंख्यात गुणा है, उससे अंतिम गुणहानि का द्रव्य असंख्यात गुणा है, यह प्रदेश विरचित अल्प बहुत्व है। इस नाना गुणहानि शलाकाओं से अपने अपने कर्म स्थिति को अपवर्तित करने पर सब कर्मों में संख्या से समभाव को प्राप्त गुणहानि का प्रमाण अर्थात गुणहानि के काल का प्रमाण उत्पन्न होता है। ये नाना गुणहानि शलाकाओं का प्रमाण हरेक में अलग अलग है, 70 कोड़ा कोड़े के लिए वो ज्यादा होगी और 40 वाले को कम होगी, 20 वाले को और भी उससे भी आधी होगी, परंतु गुनहाने का प्रमाण उतना ही है सबके लिए। नंबर ऑफ निश्चय की एक गुनहाने वो सबके लिए समान है, वो 8 ही है। हाँ, जैसे हमने 48 थे तो 6 हुई थी, अब उसके बदले भी कहीं 54 होगी, 848 थी हम। हाँ, अन्य अभ्यस्त राशि बदल जाएगी, परंतु नाना गुनहानी शाला के उस प्रोपोर्शन में आएगी। हाँ, तो आपका जो कहना है उसके बराबर आएगी। नहीं देखो, नाना गुनहानी हमने 14 अगर मानेंगे, 14 मानी थी ना हमने, अभी इसकी यहाँ की छोड़ दो, हमने जो पनट्ठी के लिए निकाली थी, पल्ले के बदले पनट्ठी लेकर निकाली थी हमने, 14 निकाली थी, अब उसके बदले अभी उसका 3 सप्तमांश करना, 6 हो गई, तो 4 से ज्यादा है ना, उन्होंने वही बोला था द्वितीय वर्गमूल के अर्धच्छेदन से ज्यादा होती है, यानी आपने जो नाना गुनहानी शलाका में लगाया था प्रोपोर्शन वो हो जाएगा। हाँ, गुनहानी समान होती है, वो तो निकालने का तरीका अलग बताया उन्होंने, वहां भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर के कितने होते हैं, ये इन्होंने 7 में बांट दी, जितनी नाना गुनहानी शलाकाएं हैं उसको 1/7 कर दिए उन्होंने। हाँ, तो अभी ऐसे हम जितनी टोटल है उसका 3 सप्तमांश करेंगे तो ज्ञानावरणी की, 2 सप्तमांश करेंगे तो नाम गोत्र की, 4 सप्तमांश करेंगे तो कषाय उनकी, 4 नहीं, गुणहानी शाला का सेम है, अन्योन्य अभ्यस्त राशि के द्वारा तो वो परमाणु के यानी टोटल संख्या में फर्क पड़ेगा, अन्योन्य अभ्यस्त राशि नाना गुणहानी प्रमाण दुआ मानकर परस्पर गुणा करने से आती है, पर नाना गुणहानी का प्रमाण 3 सप्तमांश, 2 सप्तमांश, 4 सप्तमांश ऐसा ही होगा, वो बराबर है आपकी बात, आपने पहले उठाई थी ना। देखो ये फिर पढ़ती हूँ मैं नीचे से दूसरा पैराग्राफ, इन नाना गुणहानी शलाकाओं से अपने अपने कर्म की स्थिति को अपवर्तित करने पर, जैसे मोहनीय की है 70 कोड़ा कोड़ी है, ज्ञानावरण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर है, अपने अपने कर्म स्थिति को अपवर्तित करना नाना गुनहानी की, क्योंकि उसकी अपनी अपनी नाना गुनहानी अलग अलग, सब कर्मों में संख्या से समभाव को प्राप्त, यानी सभी संख्या सभी कर्मों में गुनहानी का जो आयाम है, कितने समयों की गुनहानी होती है वो फिक्स है, इसलिए कहते समभाव को प्राप्त गुणहानी का प्रमाण, अर्थात गुणहानी के काल का प्रमाण उत्पन्न होता है, स्थिति डिवाइडेड बाय नाना गुणहानी इज इक्वल टू गुणहानी का आयाम। हमने स्थिति अपने उदाहरण में मान ली थी 48 समय की टोटल निश्चित, और नाना गुणहानी 6 मानी है, तो एक गुणहानी 8 की होगी, 8 समय की एक गुणहानी होगी। आयु कर्म की नाना गुणहानी शलाकाए सबसे स्तोक है। देखो सब कर्मों में ने इसमें भी ऐसी होगी। हाँ, नहीं लिया ना, सभी कर्मों में संख्या से समभाव को प्राप्त गुणहानी का प्रमाण, यह आयु को भी नहीं छोड़ा है। ये एक समय प्रबद्ध की बात चल रही है, ये स्थिति की गुणहानी नहीं चल रही है, सत्ता की बात नहीं चल रही है, यहाँ एक समय में बंधने वाले की बात चल रही है, वो सत्ता की बात अभी आने वाली है। सत्ता का जब कैलकुलेट करेंगे, एक का इतना है, जिसके सभी निषेक बाकी उतने इतने, किसी का एक निषेक गल गया है उसके कितने 47 निषेक बाकी हो गए, किसी के 46 निषेक बाकी हो गए, नहीं वहां तो आयु की बात अलग ही होती है, आयु को तो सबके साथ नहीं, अपनी अपनी होती है निश्चय कृष्ण, ज्ञानावरण की ज्ञानावरण में
ऐसी होती है।
हाँ ऐसी होती है, परंतु उसके आदि होगी नहीं, क्योंकि वो कितना है वहाँ पर। हाँ मगर वो असंख्यात वर्षों के आयु वाले में आदि हो जाएगी, मान लेते हैं संख्यात पल्ले ही आयु है ना, यानी उनकी गुनाहानियां असंख्यात में नहीं जाएगी मेरे ख्याल से। यहाँ क्या लिखा है देखो, आयु कर्म की नाना गुनाहानी शलाकाएं सबसे स्तोक है, वो बहुत सागरों वाली जो है उसमें जो पल्ले का असंख्यात व भाग वाला जो है उसमें तो असंख्यात हो सकती है गुनाहानियां, परंतु तो हमारे आप जैसी जो आयु गुनाहानी होगी नहीं, गुनाहानी होगी नहीं, पल्ले का असंख्यात व भाग प्रमाण गुनाहानी होती है, तो हर समय अनंत अनंत निकल रहे गोपुच्छाकार होती है, परंतु जहाँ उतनी लंबी स्थिति है उतने इतने बड़ी उसका प्रमाण है टेपरिंग। हाँ ये समझाने के लिए इतना एकदम टेपरिंग दिखा है, वो पल्ले जाके आधा होता है, एक पल्ले का असंख्यात भाग जाए है उतना काल जाने के बाद वो प्रमाण आधा हो जाएगा। अभी यहाँ हम 48 में इतना दिखाते तो एकदम टेपरिंग लगता है, तो ऐसा लंबा ट्रायंगल निकालो लगेगा नहीं। हाँ वो सीधा शिला एकदम चंद्र बना देते उसका तो आधा चांद। हाँ देखो इसको पढ़ते हैं, आयु कर्म की नाना गुनहानी शलाकाएं सबसे स्तोक है, उनसे नाम वो गोत्र कर्म की नाना गुनहानी शलाकाएं संख्यात गुणी है। नहीं गुनहानी सबकी सबकी, गुनहानी सबकी समान है, कंपैरिजन है। ये जो परंपरोपनिधा में यही बात हो रही है ना उसकी अल्प बहुत हो गए। उनसे ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वेदनीय व अंतराय की गुनहानी गुरु हो गया, गुनहानी शलाकाएं विशेष अधिक है। वो क्योंकि वो 20 और वो 30 है ना, वो डेढ़ गुना होगी। उनसे मोहनी की गुनहानी शलाकाएं संख्यात गुनी है, इसका कारण सुगम है। अभी अनन्य अभ्यस्त राशि की बात कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लो पालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो।